समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षता, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हज़्मे दस्तूर हम लाए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, उसके अलावा ऑफ कोर्स वील स्टार्ट आवर शो विद द सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। और आकर्षता, वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर हैज कम्प्लीटेड 11 ईयर्स टूडे इन ऑफिस, सो हमारे उसके तहत उनके गुजरात के दौरे पर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए, सो वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली डिस्कस सम ऑफ दैट इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि शो का नाम है परिक्रमा, तो जाहिर है जब तक देश की परिक्रमा फिर नहीं निकलेंगे तो कहां से पूरी होगी हमारी परिक्रमा, इजंट इट? सो यस, वी विल गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हु आर देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे आर हैविंग। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल से विकसित भारत को मजबूती मिलेगी। उन्होंने गुजरात के दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्प्लीट्स 11 ईयर्स इन ऑफिस, अशरिंग इन एन एरा ऑफ स्टेबल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट।
इस शैक्षणिक वर्ष में 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे।
पंजाब पुलिस अरेस्ट 4 persons इन कनेक्शन विद मर्डर ऑफ शिरोमणि अकाली दल काउंसलर हरजिंदर सिंह इन अमृतसर।
देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश।
एंड इन आईपीएल T20 क्रिकेट, पंजाब किंग्स टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस इन अ क्रूशियल गेम इन जयपुर दिस इवनिंग। And as I had mentioned, Akarshita, our Dateline India segment is the one that starts the show, that keeps the ball rolling for the next half an hour. And today we are going to talk about the locomotive manufacturing shop in Dahod, which was inaugurated by the Prime Minister today in Gujarat. And ek bahut hi ahem cheez hui hai aaj Akarshita, the launch of the High Resolution Numerical Global Model Bharat Forecast System for Operational Forecast. That will be our second topic. But first, agar baat ki jaye इस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉप की, सो वेल, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड दिस शॉप एट दाहोद्स रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप। द दाहोद लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन द ईयर 2022 एंड विद इन अ स्पैन ऑफ ओनली 3 years दिस प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन कम्प्लीटेड। The project of the Railway Ministry has been built with an investment of 21,405 crore rupees. The facility is dedicated to manufacturing 9,000 HP electric locomotives, serving both domestic requirements and also for export purposes.
प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र घरेलू और निर्यात के लिए 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करेगा। श्री मोदी ने इस संयंत्र में निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को झंडी भी दिखाई। ये लोकोमोटिव रेलवे की माल लदान क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगे। ये लोकोमोटिव पुनः उत्पादित ब्रेकिंग प्रणालियों से सुसज्जित होंगे तथा इन्हें ऊर्जा खपत को कम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगा।
The locomotives incorporate regenerative braking technology and feature energy-efficient designs, supporting eco-friendly railway operations. The Dahod Railway Production Facility will generate employment for 10,000 individuals and stimulate regional economy.
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र न केवल भारत बल्कि विश्व की जरूरतों को पूरा करेगा और इसके कई इंजन विभिन्न अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाएंगे।
We expect to export to countries in Africa, in Asia, neighboring countries around us, and many countries in Europe as well. This is a perfect example, not just of Make in India mission, but also Make for the World. And the name of Dahod, the city, the town where this production facility is located, name of Dahod will now be known not only in India, but also outside India and many other countries as well.
And now we go over to correspondent Adarsh, who is telling us more about the boost which country's infrastructure will get from today's projects launched by the Prime Minister in Gujarat.
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects worth over 24,000 crore rupees in Dahod today. These include rail projects and various projects of the Gujarat government. He also flagged off the Vande Bharat Express between Varavel and Ahmedabad, as well as the express train between Valsad and Dahod stations. The Varavel and Ahmedabad Vande Bharat Express will significantly reduce the travel time to Somnath, providing a major relief and comfort to pilgrims and tourists. On the other hand, the express train between Valsad and Dahod stations will provide better connectivity between southern Gujarat and Dahod. The Prime Minister mentioned that these railway routes will greatly benefit the tribal belt and create large-scale employment opportunities for the youth. The Prime Minister also hailed the launch of the locomotive manufacturing plant. The Prime Minister emphasized that the factory will also support small-scale industries producing railway components, leading to economic growth in the surrounding areas. He highlighted the immense potential of Dahod, stating that the event is just a glimpse of its capabilities. He emphasized that the newly developed facilities will transform Dahod into one of the most developed districts in the country. Adarsh for Parikrama, Dahod.
And well, our second topic, as I had mentioned, is the Bharat Forecast or System or the BFS. That is the launch of a very high resolution, which is 6-kilometer numerical global model, and it will be used for operational forecast. So the Ministry of Earth Sciences today launched this BFS system for operational forecast up to the panchayat level, which is expected to help address extreme rainfall events, among other things. Dedicating the model to the country, Earth Sciences Minister Dr. Jitendra Singh has said that the indigenously made BFS was developed by 5 female scientists, which highlights India's women-led development. He said that India Meteorological Department, IMD, has played a pivotal role in taking the country's economy to the 4th position, as in the last few years, the department has contributed over 50,000 crores by preventing potential losses and increasing potential gains in rupees. Mr. Singh added that despite Operation Sindoor, India achieved this milestone of becoming the 4th largest economy in the world. He mentioned that earlier in 2014, only 4 or 500 crore rupees were used to be allocated for the Earth Sciences Ministry. But under the current government, the budget has grown to nearly 20,000 crore rupees. Let's listen to what Dr. Jitendra Singh said about the system during the launch today.
बधाई के पात्र हैं हमारी सारी की सारी आईएमडी की टीम, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिस उपलब्धि के लिए और एक ऐसे समय में जब भारत 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पर अर्थव्यवस्था के आने का सेलिब्रेशन कर रहा है, तो ये कहते हुए एक बड़ा सुखद अनुभव होता है कि आईएमडी का भी कहीं ना कहीं इसका योगदान है। और आज ये एक नई पहल की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, क्योंकि उन्होंने मिशन मौसम की कल्पना की थी और उन्हीं के द्वारा घोषित भी की गई। आज भारत फोरकास्ट सिस्टम जो पूरी तरह यहीं पर विकसित किया गया और जिसको विकसित करने वाली टोली में हमारी 5 श्रेष्ठ प्रमुख महिला वैज्ञानिक है, तो जिस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न विज्ञान के मंत्रालयों में महिलाओं ने आगे बढ़कर के लीड लेना शुरू किया है, वुमेन लेड प्रोजेक्ट्स है हमारे, चाहे अंतरिक्ष में है चाहे बायोटेक्नोलॉजी में, उसका दृश्य आज आपको मौसम विभाग में भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, जब मैंने ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में अब आईएमडी की भी भूमिका बढ़ने लगी है, तो आंकड़े के आधार पर आपको यह अनुमान होगा कि पिछले कुछ एक वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है आईएमडी की सेवाओं की वजह से, कहीं कहीं पर बाय प्रिवेंटिंग पोटेंशियल लॉसेस, जो कहीं अकस्मात बारिश के होने से, तूफान आने से, साइक्लोन आने से, थंडरस्टॉर्म आने से हो जाया करते थे, और कहीं कहीं बाई इंक्रीजिंग पोटेंशियल गेन, यानी किस समय किस खेती का प्रारंभ किया जाए, किस तरह का बीज किस मौसम में लगाया जाए, हार्वेस्टिंग की टाइमिंग कैसे होगी, और आगे चल करके इसमें और भी वृद्धि होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।
सायरा, ये हमारे किसानों के लिए बड़े राहत की खबर है। इससे वे अपनी फसलों को बचा पाएंगे और शायद मौसम की वजह से उनकी फसलें भी बर्बाद होने से बच जाएंगी और मछुआरों को भी इससे फायदा होगा।
बिल्कुल।
तो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग IITM द्वारा विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन के साथ अनुमान व्यक्त करेगी। ये रिजोल्यूशन दुनिया में सबसे अधिक है जो मौसम विभाग को छोटे पैमाने की मौसम विशेषताओं के बारे में अधिक सटीक अनुमान देगा। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मौसम की ये नई प्रणाली पंचायत स्तर तक उपलब्ध होगी, जिससे किसानों और मछुआरों को फायदा होगा। डॉ महापात्रा ने बताया है कि इस मॉनसून के दौरान सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।
ये एक अत्याधुनिक पूर्वानुमान प्रणाली है, इसका नाम भारत फोरकास्ट सिस्टम है। इसलिए कि ये एक इंडिजिनसली डेवलप सिस्टम है और भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिजिटल फोरकास्टिंग, मिनिस्टर फॉर सेंसस मिलकर इसको डेवलप किए हैं। इसका जो पार्शियल रिजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर है। इससे पहले जो हमारा मॉडल था उसका रिजोल्यूशन था 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन मॉडल को लेकर हम ब्लॉक स्तर पर किसान भाइयों बहनों को हमारा पूर्वानुमान दे रहे थे। अभी जब 6 किलोमीटर बन गया, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और पंचायत स्तर पर हम सभी किसान भाइयों बहनों को पूर्वानुमान जारी करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, पहले जो हमारा मॉडल था वो मॉडल की तुलना में ये मॉडल जो है इसका एक्यूरेसी भी ज्यादा है। सो इसको देखते हुए ये हमारे किसान भाइयों बहनों को अच्छा से अच्छा पूर्वानुमान देने के लिए, सतर्क सूचना देने के लिए बहुत सहायक होगा।
And Akarshita, as I had mentioned before, that today was the day when Prime Minister Modi had taken oath as the Prime Minister of India. He completes 11 years in office today. And well, on this day in 2014, when he had taken oath, it was definitely a turning point in the country's modern political history, as it had ended the era of coalition politics in India, with people giving a clear and decisive mandate to the Bharatiya Janata Party. We have a report.
History was scripted in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on the evening of 26th May 2014 as Narendra Modi took oath as the 14th Prime Minister of India after a historic mandate from the people of India. In Narendra Modi, the people of the country see a dynamic, decisive and development-oriented leader who emerged as a ray of hope for the dreams and aspirations of a billion Indians.
Main Narendra Damodar Das Modi Ishwar ki shapath leta hu ki main विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षण रखूंगा।
His focus on development, eye for detail and efforts to bring a qualitative difference in the lives of the poorest of the poor have made Narendra Modi a popular leader across the length and breadth of the country. Mr. Modi's taking over charge as the Prime Minister was the beginning of development-oriented politics with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In the last 11 years, the country has witnessed instrumental changes in all sectors and it has gained a new confidence. From improving basic facilities for the common man, boosting infrastructure and strengthening economy to employment generation, ensuring internal security and raising India's global stature, Mr. Modi's leadership has made a new imprint worldwide. Leaving the legacy of policy paralysis, India has become the fourth largest economy in the world and now aspires to become a developed nation by 2047 under the strong leadership of Mr. Modi. With Divakar's report, Shagun Chopra, Akashwani News.
और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जो लेकर आए हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें, जो है मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के बारे में, पॉलिथीन मुक्त गुरुग्राम के बारे में और बिहार की विश्व प्रसिद्ध कलम चित्रकारी के बारे में। तो सायरा, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को कौन सी खबर सुना रही हैं?
वेल, जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किया, उसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी किया था। वी ऑल नो दैट इन द मन की बात ऑन आकाशवाणी दिस मंथ, प्राइम मिनिस्टर हैड टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड बी डे which was celebrated on the 20th of this month. The Prime Minister said that he observed that during the last 11 years, a sweet revolution has taken place in beekeeping in our country.
20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई.
Mr. Modi also highlighted the initiative by Amit Godse from Pune, who is working tirelessly to protect bees and their habitats. To learn more about his journey, let's turn to our Mumbai correspondent.
Amit Godse, a mechanical engineer by profession, left his job to dedicate himself to the noble cause of bee conservation. He established Bee Basket and initiated Pest to Pet, focusing on the rescue and relocation of bees. His transformative journey began one leisurely afternoon in his own residential society. Elaborating on this incident and his path to becoming known as the Bee Man of Pune is Amit Godse himself.
The journey started in 2012-13 when a large cluster of bees came in our society and people killed those bees by pest control by spraying harmful chemical on them. So at that time, I felt very sorry for those bees. Like as a human, we want pure honey in our life, but not bees. So that incident changed my whole life direction. So I started working on bees and we have created an organization. That organization name is Bee Basket. And through Bee Basket, we run an initiative. The initiative name is Pest to Pet. So for someone, these beehives may be a pest, but for someone, these bees can become a pet. Like many farmers and farm owners or many places, even people who are having terrace farming, those who are doing urban farming and those who have farmhouses, these people want bees to pollinate their different crops in their premises. So through this initiative, Pest to Pet, we relocate the bees along with the hive to the newer location according to species. So this is how we save the bees. Till date, we have saved around 17,000 plus beehives in Pune city itself.
Expressing gratitude for being mentioned in Man Ki Baat, Amit Godse also shares his vision to expand his work across India, aiming to protect these tiny beings who play a crucial role in our ecosystem. Let's hear from Amit himself.
I didn't expect my name will come in Man Ki Baat due to our effort saving the bees. Now I feel very honored. I feel like if you do something good in this world, the world will surely recognize your efforts. Currently, we are saving the bees in Pune, but I'm looking forward to save the bees across India.
St. John Chrysostom once said, "The bee is more honored than other animals, not because she labors, but because she labors for others." Today, individuals like Amit are working diligently to ensure that the labor of bees is recognized and valued. Ankit Apte for Parikrama from Mumbai.
अब चलते हैं रायपुर की ओर, जहां शहद उत्पादन के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है. प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का भी उदाहरण दिया. रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट.
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आदिवासी किसान सोन हनी नाम से शुद्ध जैविक शहद बना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस शहद ब्रांड का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है. कोरिया जिले की कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सोन हनी परियोजना सोनहत के जंगलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से शुरू की गई है. इस शहद को बनाने के लिए सिर्फ जंगल के फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है.
सोन हनी एक विशेष पहल है जो कि सोनहत के जंगलों में प्रारंभ किया गया है. डीएमएफ से हम लोगों ने लगभग 10 कृषकों को आइडेंटिफाई किया है. कुरुक्षेत्र हरियाणा भेजकर उन लोगों की ट्रेनिंग कराई इटालियन मधुमक्खियों के प्रयोग से. जो भी हमारे साल के वृक्ष पे फूल लगते हैं या मस्टर्ड की जो फूल लगते हैं, उसे शहद प्रसंस्कृत कर तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक आय मिल रहा है. सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जंगलों के फूल से तैयार है. हम अभी इसमें एक और डेवलपमेंट यह कर रहे हैं किसानों की मदद से कि उनके खेत में फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं और वहां पर वो शहद के डब्बे लगाए जाएंगे ताकि एक स्पेशल शहद तैयार हो. मैं यह भी बताना चाहूंगी कि तुलसी हनी भी यहां पर तैयार किया जा रहा है, जो सिर्फ तुलसी के फूलों पर तैयार किया गया, जो कर्मा के नाम से सेलिंग होती है.
जिले के किसान कंदूराम कुर्रे ने बताया कि मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है.
कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन के सौजन्य से मधुमक्खी पालन के लिए शहद की पेटियां प्राप्त हुई हैं और ये शहद पालन का कार्य के लिए हमें हरियाणा से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है. मधुमक्खियों का देखरेख उनका सही ढंग से जो है पालन का कार्य कर रहे हैं और इसके पालन से हम लोगों को फायदा प्राप्त हो रहा है, आर्थिक लाभ.
कोरिया जिले का सोनहनी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर बने शहद की हर बूंद में स्वाद ही नहीं भारत की मेहनत और उम्मीदें घुली होती हैं। शहद की यह मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
तो बहुत ही मीठी मीठी बातें तो बता दी हमारे संवाददाताओं ने, ऑफ कोर्स अब टेलिंग अबाउट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर यू नो प्रोडक्शन ऑफ हनी, वी ऑल नो दैट हनी बीज से दे प्ले सच अ पिवोटल रोल इन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दिस प्लैनेट। कहते हैं बहुत से साइंटिस्ट कि अगर हनी बीज नहीं रहेंगी तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे
अगले चार सालों में।
यस, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी कीपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर हैजर्ड टू planet, which is plastic. And there's a lot of plastic waste, especially which is we can find them in ocean beds there. They are very detrimental to aquatic life and hence hampering the life on the planet itself. It is a serious environmental issue. Plastic objects that are not properly recycled or disposed of, they are illegally dumped, they are becoming a major menace to this planet and of course to humans as well. This waste contaminates not only land but also waterways and oceans, harming wildlife, ecosystems and potentially human health. The accumulation of plastic waste is a global problem, with millions of tons entering the environment each year.
जी सायरा, आपने बहुत सही कहा कि ये जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, एक तो पहली बात तो ये डिकम्पोज नहीं होते, तो इसको हम रिसाइकल ही कर सकते हैं और कुछ इसका किया नहीं जा सकता, इसलिए इससे कम से कम हमें यूज भी करना चाहिए। और इसी से संबंधित है, हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम को पॉलीथीन मुक्त बनाने हेतु नागरिकों से सहयोग का आह्वान किया है। प्रस्तुत है हमारे हरियाणा संवाददाता अश्विनी की ये रिपोर्ट।
पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि गुरुग्राम एक तेजी से विकसित होता शहर है और ऐसे में विकास के साथ उत्पन्न हो रही समस्याओं का समय पर समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के चलते पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इसके समाधान हेतु जन सहभागिता अनिवार्य है। इसी क्रम में उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि पॉलीथिन मुक्त गुरुग्राम अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में योगदान करें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को हम सब मिलकर ही स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। पॉलीथीन के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए सामूहिक रूप से जागरूकता फैलाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें कई विकल्पों को अपनाना होगा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का जिक्र करते हुए सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
और अब बढ़ते हैं अपनी आज की अगली रिपोर्ट की ओर। पटना कलम चित्रकारी एक पुरानी चित्रकला है जिसे अंग्रेजों ने मुगल चित्रकला से प्रेरित होकर प्रश्रय दिया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकसित हुई यह चित्रकला धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। चित्रकारी की ये शैली आम लोगों के जीवन को दर्शाने पर केंद्रित थी और इसे कंपनी चित्रकला के रूप में भी जाना जाता था। ये अपने साथ में एक ऐतिहासिक दस्तावेज समेटे भी है जो उस समय के जीवन साक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित है। दोबारा इस कला को जीवन मिले इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
भारत में ग्लोबल सिटीजन तैयार हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम विश्व की जो अच्छे
And there is some glitch that we couldn't play the exact report. Nonetheless, आपने लोगों को बता दिया कि चित्रकारी के क्या है। I think we have solved that glitch, so we are going to play that. I'm sorry, beg your pardon, listeners. We don't have that report, but
और सायरा, अगर हम ये चित्रकला की जो बात करें, अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी ढेर सारी कलाएं हैं जिसको हमें सजोने की आवश्यकता है, जो इतनी ज्यादा खास, यूनिक है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी उनकी काफी डिमांड्स हैं। जैसे आप देखते हैं कि वो चित्रकला बिहार की है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की है, जो हम प्लेट्स देखते हैं, प्लेट्स में मुगल शासक के इतने ढेर सारी चित्रकला आर्ट्स हैं जिसको हमें सजोने की आवश्यकता है।
आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री दैट ऑल द रीजन्स हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टुवर्ड्स आर्ट्स एंड कल्चर। एंड विद दैट हमारे देश की परिक्रमा तो खत्म हुई, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन ये मैच इसलिए अहम है क्योंकि जीतने वाली टीम शीर्ष दो में स्थान हासिल कर सकेगी और पहले क्वालिफायर मैच में जगह बना पाएगी।
And some news from the world of chess. Well, world champion D. Gukesh will take on Magnus Carlsen in the opening round of the prestigious Norway chess tournament, which is starting today and at Stavanger. Debutant Arjun Erigasi will take on China's Wei Yi. This is the first time India has two male players in the tournament, boosting hopes for a historic title. In the women's section, Koneru Hampi will face fellow Indian R. Vaishali in the opening round. And now it's time for some business news. Well, the benchmark equity indices today ended with gains of over 0.5%, extending their rising streak to second consecutive session. The market sentiment was boosted by positive domestic and global cues and buying across most sectors, with auto and IT leading the gains. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange climbed 455 points to close at 82,176. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 0.6% to settle at 25,001. And now we will remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries today. तो इस श्रृंखला में सबसे पहले किसको याद कर रही हैं?
जी, आज हम याद कर रहे हैं मनोरमा को। आज दक्षिण सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका मनोरमा की जयंती है। उन्होंने 1500 से अधिक तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। मनोरमा ने फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार पाया और कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। 1000 फिल्में पूरी होने के साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उन्होंने अपना करियर बतौर स्ट्रीट गायिका शुरू किया था। वे कभी कभी रंगमंच कर्मियों के लिए भी गाती थी। ऐसे ही एक शो के दौरान उनका नाम मनोरमा पड़ गया। जल्द ही वे एस राजेंद्र की नाटक मंद्रम से जुड़ गई और यहीं उन पर गीतकार कन्नन दासन की निगाह पड़ी, जिन्होंने उन्हें तमिल फिल्म मलयता मंगे में लिया। 1963 में उन्होंने तमिल फिल्म कुजुम कुमारी से मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की। 2 साल बाद ही वे एपी नागराजन द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म थिरुविलदायल और 1 साल बाद दोबारा नागराजन द्वारा निर्देशित फिल्म सरस्वती सबथम में नजर आई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग।
கண்ணாத்தா பேரு பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு இந்த ஊருக்குள்ள நுழையறான்னா இந்த ஊரே அசந்து போகணும். எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்களா? ரவைக்கு கோயில்ல பஞ்சமூர்த்தி புறப்பாட்டுக்கு சொல்ல சொல்லியிருந்தேனே
சொல்லிட்டேன்.
அப்புறம் கீழே வளவுல எல்லா வீட்டுக்கு வேட்டி செலவு வாங்கி கொடுக்கணும் சொல்லியிருந்தேனே வாங்கிட்டீங்களா?
வேட்டி செலவு
वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
Today we are also remembering Benjamin Pyare Pal, who was an Indian plant breeder and agronomist who served as the director of the Indian Agricultural Research Institute in Delhi and as the first director general of the Indian Council of Agricultural Research. He worked on wheat genetics and breeding but was also known for his interest in rose varieties. He was elected a fellow of the Royal Society in the year 1972, he was a bachelor and donated his property to the Indian Council of Agricultural Research. He was awarded the Padma Shri in 1959, the Padma Bhushan in 1968. A rose garden from the library at the Indian Agricultural Research Institute is named in his honor. We are also remembering John Wayne today, a very popular American actor of yesteryears. And the American Film Institute selected John Wayne as one of the greatest male stars of classic American cinema. And his career flourished from the silent film era of the 20s through the American New Wave as he appeared in a total of 179 films and TV productions. He was among the top box office draws for 3 decades. Let's hear a dialogue.
They handed me you guys as a present, a regular Easter basket. They told me to get you into some kind of shape so you could handle a little piece of this war. And that's what I'm gonna do. And that means I'm gonna tell you what to do every day and every minute of every day. I'm gonna tell you how to button your buttons. I'll even tell you when to blow your noses. And if you do something I don't like, I'm gonna jump. And when I land, it'll hurt. I'm gonna ride you till you can't stand up. But when you do stand up, you're gonna be Marines.
आज पंजाब के 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे कंवरपाल सिंह गिल की पुण्यतिथि है। उन्हें पंजाब के आतंकवादी और उग्रवादी विद्रोह को नियंत्रित करने का श्रेय दिया जाता है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।